ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 34 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 8 नए जन औषधि केंद्र और सभी सरकारी अस्पतालों में अत्याधुनिक अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। दिल्ली के सरकारी स्कूल के 14 विद्यार्थियों का चयन जर्मनी के प्रतिष्ठित APAL प्रोजेक्ट 2025 के लिए हुआ। खाद्य और आपूर्ति विभाग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भारत मंडपम में गिफ्ट्स वर्ल्ड एक्सपो और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड एक्सपो का उद्घाटन किया। दिल्ली नगर निगम की विशेष बैठक में 12 विशेष समितियों और 11 तदर्थ समितियों के सदस्यों का चुनाव संपन्न। और दिल्ली सरकार द्वारा कल से 27 जुलाई तक तीज महोत्सव का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 34 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 8 नए जन औषधि केंद्र और सभी सरकारी अस्पतालों में अत्याधुनिक अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने 7 नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने की भी घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार न केवल शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेगी बल्कि माध्यमिक और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को भी उन्नत बनाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2026 तक 1139 आरोग्य मंदिर बनाने का लक्ष्य रखा है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजधानी में 93 लाख आभा कार्ड बनाए हैं। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली में विकास का एक मजबूत संकेतक है और शहर को एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अस्पताल कोविड के समय में जिनकी नींव रखी गई थी परंतु वो शुरू नहीं हो पाए थे, जिन्हें ICU हॉस्पिटल डेवलप करने के लिए सोचा गया था, उन 7 प्रीमिसेस को हम सुपर स्पेशलिटी ICU हॉस्पिटल बनाएंगे, जहां हर एक बीमारी के लिए एक स्पेशल अस्पताल और उन अस्पतालों में जा करके जो ICU बेड की कमी दिल्ली में है उसे पूरा किया जाएगा।
इन आरोग्य मंदिरों में मातृत्व देखभाल, निशुल्क टीकाकरण, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और उपचार, TB और कुष्ठ जैसे दीर्घकालिक रोगों का निवारण, कई बीमारियों की नियमित जांच और प्रबंधन और निशुल्क लैब टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं HIMS के माध्यम से अब OPD पंजीकरण से लेकर जांच, रिपोर्ट, दवाएं और एम्बुलेंस सेवाएं, हर सुविधा पारदर्शी, तीव्र और पूरी तरह डिजिटल होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली सरकार के स्कूल के 14 विद्यार्थियों का चयन जर्मनी के प्रतिष्ठित APAL प्रोजेक्ट 2025 के लिए हुआ है। इस मौके पर दिल्ली सचिवालय में एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तथा शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इन विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्व की बात है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों से पढ़ने वाले ये छात्र अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना हुनर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को उड़ान दी है। वहीं शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने ये जानकारी दी कि इन 14 विद्यार्थियों को जर्मनी में APAL प्रोजेक्ट के तहत 3 से 3.5 वर्ष के व्यावसायिक प्रशिक्षण दी जाएगी। ये प्रोग्राम युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेगा। खाद्य और आपूर्ति विभाग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज भारत मंडपम में गिफ्ट्स वर्ल्ड एक्सपो और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड एक्सपो का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय इस आयोजन के 28वें संस्करण में लगभग 700 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं, जो 5 विशाल प्रदर्शनी हॉलों में 4000 से अधिक ब्रांडों के 30000 से अधिक उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं। इस एक्सपो में विभिन्न आकार, प्रकार और श्रेणी में उपहार तथा प्रचार समाधान प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें गृहसज्जा और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उपलब्ध हैं। दिल्ली नगर निगम की विशेष बैठक में आज 12 विशेष समितियों और 11 तदर्थ समितियों के सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। एक प्रेस वार्ता के दौरान महापौर राजा इकबाल सिंह ने इसकी जानकारी दी और कहा कि सभी नामांकनों को वैध घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी नेता सदन ने शिक्षा समिति के 3 सदस्यों तथा तदर्थ समिति के 3 सदस्यों के नामांकन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री सिंह ने कहा कि विशेष और तदर्थ समितियों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है और इसके लिए चुनाव 6 और 7 अगस्त को संपन्न होंगे। दिल्ली सरकार कल से 27 जुलाई तक तीज महोत्सव का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक समृद्धि और सामुदायिक समरसता को बढ़ावा देना है। इस महोत्सव का आयोजन दिल्ली हाट पीतमपुरा में होगा। महोत्सव में 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जिन पर पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा और व्यंजनों की विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। महिलाओं और युवतियों के लिए मेहंदी डिजाइन, बिंदी, सजावट और रंगोली जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि वर्तमान सरकार दिल्लीवासियों को स्वच्छ हवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार नतीजे देती है, जबकि पहले की सरकारें सिर्फ बहानेबाजी करती थीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हर दिन कई मीट्रिक टन कचरे का निपटान कर रही है।
कई मेट्रिक टन कूड़ा रोज हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ों को रोज नीचे ला रहे हैं। मिस्ट के साथ नई दिल्ली के अंदर और द्वारका के अंदर लगातार काम किया जा रहा है। पोल्यूशन के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई रेखा गुप्ता जी की सरकार ने छेड़ रखी है, उसके चलते लाखों प्लांट्स, पेड़ लगाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है, जिसके चलते दिल्ली को साफ हवा मिलनी शुरू हुई है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, तो वे पूरे साल में सिर्फ 110 दिन ही हवा साफ कर पाए थे, जबकि वर्तमान सरकार आने के बाद पिछले 7 महीनों में 118 दिन साफ हवा उपलब्ध कराई गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि पंजाब में सड़क सुरक्षा बल के नाम पर 14 करोड़ 50 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब पुलिस ने वर्ष 2024 में 144 टोयोटा हिलिक्स गाड़ियां खरीदी और एक भी रुपए की थोक छूट नहीं ली। उन्होंने इस पत्र के जरिए इस संबंध में श्री केजरीवाल से जवाब मांगा। श्री सिरसा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी इस मामले में समयबद्ध तरीके से जांच के आदेश देने का अनुरोध किया है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि जन औषधि केंद्र और जन औषधि मंदिर से दिल्ली के लोगों पर दवाओं का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।
दिल्ली की जनता के ऊपर एक बोझ हमेशा दवाई के नाम पे दिल्ली की जनता के ऊपर पड़ता था, वो काफी कम होगा, क्योंकि 50-70% दवाई सस्ती मिलेगी, अच्छी दवाई मिलेगी, गुणवत्ता वाली दवाई मिलेगी। तो जन औषधि केंद्र खोलने का लाभ 25 स्थानों पे हमने खोला है, तो लाभ स्वाभाविक दिल्ली की जनता को मिलेगा।
श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली वासियों को सर्वोच्च और बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज बक्करवाला क्षेत्र में निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का निरीक्षण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यहां निर्माण से जुड़े कचरे को सुनियोजित तरीके से ईंटों, टाइल्स और अन्य निर्माण सामग्रियों में परिवर्तित किया जा रहा है, जो पर्यावरण संवेदनशील विकास की दिशा में एक सशक्त पहल है। श्री वर्मा ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों के साथ इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा की है कि कैसे इस प्रकार के कचरे का और भी व्यापक स्तर पर अन्य क्षेत्रों में पुनः उपयोग किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि सरकार सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण तथा किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। वे आज नई दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। एक रिपोर्ट।
श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि दृढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता, बढ़े हुए सरकारी वित्त पोषण तथा सही नीति के साथ स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% हो गया है। उन्होंने कहा कि एक संस्थान के रूप में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस कॉलेज ने स्नातकोत्तर और विशिष्ट पाठ्यक्रमों के माध्यम से लैंगिक समानता में योगदान देते हुए अपनी विशेषता को बनाए रखा है। उन्होंने सभी छात्राओं से देश की स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य और पिछले 11 वर्षों में इसमें आए बदलाव के बारे में जानने का आग्रह किया। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। भाजपा के जनार्दन मिश्रा ने भी ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की। बाद में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। सुबह के समय विपक्षी सदस्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए सदन के आसन के समक्ष आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद वे सदस्यों को नियमों के अंतर्गत सभी मुद्दों पर चर्चा की अनुमति देंगे, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विरोध जारी रखा। उधर राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच राज्यसभा में समुद्र मार्ग द्वारा माल परिवहन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया गया। सुबह तमिलनाडु के 6 सेवानिवृत्त सदस्यों को विदाई दी गई, जिनका आज कार्यकाल पूरा हो गया। उपसभापति ने नव मनोनीत सदस्य उज्जवल निकम को शपथ दिलाई। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री निकम ने कहा कि वे संसद में अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करेंगे।
शपथ लेने वक्त मैंने ये भी कहा कि ईश्वर की साक्ष्य लेकर मैं शपथ देता हूँ कि जो हमारा संविधान है उस संविधान पर पूरी निष्ठा से उसका पालन करूंगा और जो जिम्मेदारी मैं लेके जाने वाला हूँ उस जिम्मेदारी भी बहुत अच्छी खूबी से निकालूंगा, ये मैंने आश्वासित किया।
सरकार ने बताया है कि भारतीय विमानन कंपनियों के बेड़े में 33 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान हैं। आज लोकसभा में ये जानकारी देते हुए नागरिक विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि इनमें से 31 विमानों का निरीक्षण किया गया है, जिनमें से 8 विमानों में मामूली खामियां पाई गई। उन्होंने बताया कि इन विमानों को सुधार के बाद परिचालन की अनुमति दे दी गई है। श्री मोहोल ने बताया कि शेष बचे 2 विमान निर्धारित रखरखाव के अधीन हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की रणनीतिक सफलता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत के विकास, भारतीय किसानों, छोटे और लघु उद्योगों और युवाओं के लिए एक बड़ी जीत है। इसके अलावा ये मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों पर धोखाधड़ी और धन शोधन के मामले में 35 स्थानों पर छापेमारी की। इस जांच में 50 कंपनियां और 25 से ज्यादा लोग शामिल हैं। निदेशालय ने कहा है कि प्रारंभिक जांच में 2017 और 2019 के बीच एक निजी बैंक से लगभग 3,000 करोड़ रुपए के ऋण का दुरुपयोग के पता चला है। कलाकारों के एक समूह ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 29 कलाकारों का ये समूह 14 जुलाई से आज तक राष्ट्रपति भवन में रहा और इसने कला उत्सव 2025 के दूसरे संस्करण में भाग लिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कलाकारों द्वारा उनके निवास कार्यक्रम के दौरान बनाई गई कला प्रदर्शनी को देखा। उन्होंने सोहराय, पट्टचित्र और पटुआ सहित भारत की महत्वपूर्ण पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में इन कलाकारों के योगदान की सराहना की। देश भर में आज आयकर दिवस मनाया जा रहा है। ये भारत के वित्तीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। ये दिवस देश के कर प्रशासन में विकास और एक सुव्यवस्थित तथा नागरिक केंद्रित प्रणाली के निर्माण के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। राजधानी दिल्ली में आज दिनभर धूप देखने को मिली, जिसके कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 34 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 8 नए जन औषधि केंद्र और सभी सरकारी अस्पतालों में अत्याधुनिक अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। दिल्ली के सरकारी स्कूल के 14 विद्यार्थियों का चयन जर्मनी के प्रतिष्ठित APAL प्रोजेक्ट 2025 के लिए हुआ। खाद्य और आपूर्ति विभाग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भारत मंडपम में गिफ्ट्स वर्ल्ड एक्सपो और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड एक्सपो का उद्घाटन किया। दिल्ली नगर निगम की विशेष बैठक में 12 विशेष समितियों और 11 तदर्थ समितियों के सदस्यों का चुनाव संपन्न और दिल्ली सरकार द्वारा कल से 27 जुलाई तक तीज महोत्सव का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।